मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा सादर नमस्कार। फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैंने पहले वाक्य में भी बहुत बहुत शब्द का प्रयोग किया और अभी फिर मैं बहुत बहुत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आदत सी पड़ गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। उसका कारण यह है कि एनर्जी पर बेस्ड ये जितने भी अभी तक ऑडियो फॉर एक्सीलेंस आ रहे हैं, और बेसिकली इसे मैं एनर्जी पर बेस्ड कहने की बजाय स्वयं के क्षमता के मूल्यांकन का आधार विकसित करने का जो तरीका बताया जा रहा है वो कहना ज्यादा पसंद करूंगा, पर जो आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो वास्तव में अद्भुत हैं। ये प्रतिक्रियाएं दो तरह की मिल रही हैं। पहली तो यह कि यह बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट है, इसे हमें बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा होगा, हमारे परिवार के सदस्य भी इसे सुनते हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। दूसरी तरह की प्रतिक्रियाएं हैं कि हमने ऐसा किया और हमको ये फायदा हुआ, मैंने इसे स्वयं के जीवन में महसूस किया है, आपके सुनने के बाद मुझ में इसकी क्षमता और अधिक बढ़ गई है, इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। यानी कि जो पहली प्रतिक्रिया है वो एक आकर्षण की प्रतिक्रिया है, अट्रैक्शन की प्रतिक्रिया है, और स्वाभाविक है कि किसी भी चीज को पाने की शुरुआत आकर्षण से ही होती है, वो गलत नहीं है। जब तक आप किसी के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो मिलेगी ही नहीं, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए पहले श्रेणी की प्रतिक्रिया को भी मैं एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रतिक्रिया मानता हूं, और दूसरे श्रेणी की जो प्रतिक्रिया है वो तो डेफिनेटली अपने में श्रेष्ठतम है ही, क्योंकि अंततः हमें पहुंचना तो वहीं तक है। क्योंकि मित्रों, मैं तो बहुत ही एक सिंपल सिंपल बातें करने में विश्वास करता हूं, और ऐसी बातें जो खासकर हमारी जिंदगी में काम आने वाली हो, अक्सर मैं अपने नौजवान साथियों को, अपने शुभचिंतकों को, या जो भी मुझसे सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक बात अक्सर उनसे कहता हूं, और वो ये, मान लीजिए कि मेरे पास महाराणा प्रताप की तलवार है, वो तलवार जिससे उन्होंने अपने समय में सर्वश्रेष्ठ शौर्य का परिचय दिया, वो तलवार मेरे पास आ जाती है। मैंने महाराणा प्रताप की वो तलवार देखी है, अद्भुत है, आकार में, लंबाई में, मतलब कहना क्या, मेरे पास आ जाती है, और मैंने उसे दीवार पे टांग दिया, एक मोटी सी खूंटी लगा करके लोहे की, और उसमें लटका दिया। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक मैं उसे चलाऊंगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, और चलाने से पहले मुझे उसे चलाना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज चाहे कोई भी चीज हमारे पास कितनी भी कीमती क्यों ना हो, यदि हम उसका उपयोग नहीं करते तो वह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपके पास 50 लाख रुपए की मर्सिडीज कार है और आप केवल उसके हिफाजत में लगे हुए हैं कि इसे डेंट न लग जाए, इस पे धूल न जम जाए, इसके चक्कों में कहीं कीचड़ न फंस जाए, और रोज आप सिर्फ उसकी सफाई करते हैं, उसे अपने गैरेज से बाहर नहीं निकालते हैं, तो चाहे वो कार आपके पास हो या न हो, दोनों ही बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिवाय एक मानसिक विलास है। मानसिक विलास का मतलब है कि आपको केवल संतोष हो रहा है कि मेरे पास एक मर्सिडीज कार है, दैट्स ऑल। जिंदगी तो वैसी ही है, ठीक वैसी ही जैसे कि मर्सिडीज कार के नहीं होने से पहले थी, तो उसका क्या अर्थ है? इसीलिए मित्रों, एनर्जी पर हम जो भी बातें कर रहे हैं, बेसिकली आज मैं आपसे इमोशनल एनर्जी के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी पर बात करूंगा। ये जो चारों चैनल्स मैंने बताए हैं, अभी मैंने केवल इसके बारे में आपको एक सामान्य सी जानकारी दी है, आपका इनसे परिचय कराया है, इनसे मुलाकात कराई है, दैट्स ऑल। इन्हें आप अपना बनाएंगे कैसे, इनके साथ अपना दोस्ताना संबंध कैसे स्थापित करेंगे, और बल्कि दोस्ताना से भी ज्यादा मैं कहूंगा, इनसे आप अपना रूहानी रिश्ता कैसे स्टैब्लिश करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यदि मैं ये बात नहीं बताता हूं तो फिर मेरी स्थिति वही हो जाएगी कि मैंने आपके हाथ में राणा प्रताप की तलवार तो पकड़ा दी लेकिन चलाना नहीं सिखाया। हम धीरे धीरे उस स्थिति पर भी पहुंचेंगे दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में। सबसे पहले मित्रों, मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, और ये जो बात है ये मेरी अपनी बात है, निहायत ही अपनी बात है। यह बात न तो किसी धर्म ग्रंथ की है, न किसी साधु संत की है। हो सकता है कि उन्होंने भी ये बात कही हो, और ये भी हो सकता है कि उनको पढ़ने के बाद उनकी ही बात को मैंने अपनी बात बना ली हो। लेकिन मैं अपनी बात इसे इसलिए कह रहा हूं कि जो भी मैं इस बारे में आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं मेरे अपने अनुभव, अपनी आस्थाएं, अपनी मान्यताएं, अपने प्रयोग, अपने अवलोकन, अपने अध्ययन, अपने चिंतन पर आधारित हैं। नो डाउट, मैं कोई लाइफ मैनेजमेंट का वैज्ञानिक नहीं हूं। मैं अपना रोल एक ऐसे मधुमक्खी की तरह ही मानता हूं दोस्तों, जो पता नहीं कितने फूलों पर बैठ करके उनका रस लेती है और शहद के रूप में आपको प्रोवाइड कर देती है। बस मेरा रोल उसी मधुमक्खी की तरह है। तो जहां जहां मैं बैठा हूं, जहां जहां मुझे कुछ फूलों के रस मिले हैं, उनको मिलाने के बाद, ढेर सारे फूलों के रसों को मिलाने के बाद जो मेरे पास इकट्ठा हो सका है, उसी मधुरस को आज मैं आपके सामने स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में पेश कर रहा हूं। मित्रों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तब सीधे सीधे वो धर्म से जुड़ जाती है। यानी कि मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं धर्म की बात कर रहा हूं, मैं भगवान की बात कर रहा हूं, और जैसे ही धर्म और भगवान की बात आती है तो फिर उसमें संप्रदाय जुड़ जाते हैं कि मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, या इस्लाम की बात कर रहा हूं, या क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, पता जितने भी धर्म के पंथ हैं उन सबकी बात कर रहा हूं, या उसमें से किसकी बात कर रहा हूं, या किस किस को मिलाकर बात कर रहा हूं। मित्रों, मेरा यह बहुत स्पष्ट रूप से मानना है, शायद आप में से भी कुछ लोगों का मानना हो, और यदि ऐसा नहीं है तो शायद कुछ समय के बाद आप सब भी ऐसा मानने लगे, हु नोस, कौन जानता है। मेरा मानना है कि जो धर्म है बेसिकली स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का साधन है, ये सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियां चाहे लोहे की बनी हो, या बांस की बनी हो, या सोने की बनी हो, उसका काम एक ही होता है कि जो भी उस पर चढ़ना चाह रहा है वो उसे ऊपर तक चढ़ा दे। पैर चढ़ने वाले को ही उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सोने की सीढ़ी जिसके पास है वो बिना पैर उठाए ही अगले 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 ऊपर तक पहुंच जाएगा। बांस के साथ भी वही है, सोने के साथ भी वही है। धर्म को मैं इसी रूप में मानता हूं, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों न हो, अगर आप उसके मर्म को जानते हैं तो आप देखेंगे कि ये सभी धर्म हमें स्पिरिचुअलिटी तक ले जाने के केवल एक रास्ते हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं। जो हमारे इन धर्मों के उपदेश देने वालों ने महसूस किया वो हमें बता दिया, लेकिन जो महसूस किया है वो मर्म को किया है, और वो मर्म की ही बात को बता तक पहुंचने के लिए ये अपने अपने रास्ते बताते हैं, और वो रास्ते सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं, होते ही हैं, और यही तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि सारे रास्ते वहीं तक पहुंचते हैं। इसलिए मित्रों, सबसे पहली बात जो मैं आपके दिमाग में क्लियर करना चाहूंगा वो ये कि स्पिरिचुअल एनर्जी को आप रिलीजियस एनर्जी मत समझें, रिलीजन की एनर्जी मत समझें, इसे धर्म से जोड़कर बिल्कुल भी न देखें। और धर्म के रूप में जोड़ करके देख सकते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा अलग है। यहां जिस रूप में धर्म आज हमारे समाज में जाना जा रहा है, एक्शन में लाया जा रहा है, इसलिए मैं इस बारे में ये बात कह रहा हूं। मेरा धर्म से विरोध नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, बशर्ते कि उसको सही रूप में समझा और जाना जाए। मित्रों, ये अब मैं आता हूं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है। स्पिरिचुअल जो शब्द है, देखिए, ये स्पिरिट से है, आत्मा से है। स्पिरिट का मतलब आप है ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हम कहते हैं, बोलचाल में कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या मतलब हुआ? एक खिलाड़ी की आत्मा, एक खिलाड़ी का मस्तिष्क नहीं। देखिए, यहां थोड़ा सा आपको बारीकी से थोड़ी सी इन चीजों को देखनी पड़ेगी। वो स्पोर्ट्समैन माइंड नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मतलब माइंड तो हो सकता है कि स्पोर्ट्समैन से भी बहुत मजबूत दिमाग दूसरों का हो, लेकिन जो आत्मा है वो स्पोर्ट्समैन की बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो स्पोर्ट्समैन की आत्मा क्या है? स्पोर्ट्समैन का माइंड तो यह है कि वो हारने के दौरान भी हमेशा जीत की उम्मीद रखता है, हार कर भी वो जीतने के लिए फिर से तैयारी करने लगता है। ये स्पोर्ट्समैन माइंड है जो हम सबको रखना ही है, जिसे मैंने आपने आपसे मेंटल एनर्जी के तहत चर्चा कर चुका हूं जिसके बारे में। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है? ये आत्मसात है। वो आपको कहां दिखाई देती है? वो आपको तब दिखाई देती है दोस्तों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जब हारा हुआ खिलाड़ी जीते हुए खिलाड़ी से जाकर हाथ मिलाता है और उसके कंधे को थपथपाकर शाबाशी देते हुए कहता है कि वेल प्लेड, तुमने बहुत अच्छा खेला, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, और फिर वो अगली बार फिर से कोशिश में लग जाता है और उसके प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना नहीं पालता, बावजूद इसके कि उसको मालूम है कि इसी से मेरा पाला फिर पड़ना है। तो अपने को हराने वाले को भी उसने जिस तरीके से समान भाव से एक्सेप्ट किया है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, नॉट द स्पोर्ट्समैन माइंड। शायद आप इस थोड़े से इस उदाहरण से इसके एक बारीक अंतर को समझ पाए। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आत्मा क्या चीज होती है, बायोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, मैं उन चक्रों में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वो एक फिर अलग विषय हो जाएगा कि आत्मा होती भी है नहीं भी होती है, ये सब तर्क जाल हैं। मैं तर्क जाल में न जाकर के मैं सीधे सीधे जीवन के बहुत व्यावहारिक पक्ष पर आ रहा हूं। मित्रों, आप ध्यान दीजिए कि पीछे इससे ठीक पहले वाले ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एनर्जी या कला या जो भी हम देखते हैं उसके रूप छोटे होते जाते हैं, वैसे ही उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इमोशनल एनर्जी, हमने देखा कि फिजिकल एनर्जी दिखाई देती है, मेंटल एनर्जी उसे थोड़ी कम दिखाई देती है, इमोशनल एनर्जी उससे भी कम दिखाई देती है, और स्पिरिचुअल एनर्जी तो सही मायने में दिखाई ही नहीं देती, वो सिर्फ एक अनुभव करने की चीज है, और एक इमोशनल एनर्जी के साथ भी लगभग लगभग यही होती है, ये दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों, तो फिर ये इमोशनल एनर्जी है क्या? कुछ लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये बात आएगी, आनी ही चाहिए, कि ये इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी में फर्क क्या है? कि ऐसा तो नहीं कि इमोशनल एनर्जी ही स्पिरिचुअल एनर्जी है? एक मेरे पास बहुत अच्छा प्रश्न आया था इसी संदर्भ में, मैं इसी के साथ ही साथ उसका भी जवाब देना चाहूंगा। सेंसिटिविटी, एक स्टूडेंट ने मुझसे एक मेल पर पूछा कि सर, आप इमोशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप मेंटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और मैंने मेंटल एनर्जी की बात करते समय जब एक पहलवान का उदाहरण दिया था तो मैंने सेंसिटिविटी की बात की थी कि एक खिलाड़ी जो हार रहा है लेकिन उसे जीतना भी है और जीतने के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है, तो वो कितना सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन उसे अपनी मेंटल एनर्जी के माध्यम से अपनी शारीरिक क्षमता को और मस्तिष्क की क्षमता को बनाए रखना होता है, और यह उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने यह बात कही थी। यह सेंसिटिविटी क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आप स्पिरिचुअल और इमोशनल और सेंसिटिविटी में बहुत अच्छे से अंतर कर पाएंगे, और ये अंतर आपको जानना, मुझे लगता है फ्रेंड्स, इसलिए भी जरूरी है ताकि जब आपके अंदर ये एनर्जी पैदा हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन है, ताकि आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर सके। ये तो हमारे लाइफ मैनेजमेंट का या पूरे के पूरे एक जीवन विज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपका व्यवहार हर के साथ अलग अलग होना चाहिए। यह बात अलग है कि हर के साथ बेहतर होना चाहिए, लेकिन सभी के साथ आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ आपका जो इंटरेक्शन होगा, जो व्यवहार होगा, वो इमोशनल के साथ अलग होगा, और जो इमोशनल के साथ होगा वो मेंटल के साथ अलग होगा। मेंटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप तर्क का सहारा लेंगे, लेकिन इमोशनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए अगर आपने तर्क का सहारा लिया तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो उसको कमजोर करने वाला हो जाएगा। और जब आप स्पिरिचुअल एनर्जी पर पहुंचेंगे तब तो पता लगा कि जो इमोशनल का भी जो आप सहारा ले रहे थे वो भी आपको गायब करना पड़ेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि फिलहाल आपको किस तरह की एनर्जी की जरूरत है। इसलिए मैं थोड़ी सी सेंसिटिविटी और इस इमोशनल एनर्जी में एक और मेंटल एनर्जी में थोड़ा सा मैं आपको एक फर्क बता रहा हूं। एक खिलाड़ी है, सेंसिटिव होता है क्योंकि उसको देश के लिए खेलना है, वो अगर हारेगा तो देश हारेगा, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ये जो सेंसिटिविटी है ये सेंसिटिविटी उसको कमजोर नहीं करती, बल्कि वह उसको ताकत प्रदान करती है। एक तो यह सेंसिटिविटी हुई, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं, शाम का वक्त हो गया है, सुनसान जगह है, आप देखते हैं कि सामने एक बाइक है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक आदमी किनारे पड़ा है, उसकी बाइक के उससे अलग पड़ी हुई है और वो लहूलुहान है, आप उसे देखते हैं। अब यहां दो प्रतिक्रियाएं होंगी, एक तो यह है कि आप इतने सेंसिटिव हो जाएंगे उसको देखने के बाद, इतने करुणा और इतने दया से भर जाएंगे कि आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है, आप खुद लस्तम पस्तम पड़ गए। बहुत लोग तो मैंने ये भी देखा है कि जहां भी खून देखा और बेहोश हो गए। चलिए वो एक मेंटल इलनेस भी होती है, एक बीमारी जैसी भी होती है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये सेंसिटिविटी हुई, ये ऐसी सेंसिटिविटी हुई जो आपको कमजोर कर रही है। लेकिन सेंसिटिविटी का एक दूसरा पार्ट होगा जिसको गौतम बुद्ध ने करुणा का नाम दिया है। दया और करुणा में उन्होंने ये थोड़ा सा फर्क बताया है, हालांकि उसको बड़ा सूक्ष्म तरीके से पकड़ना पड़ेगा। सेंसिटिविटी एक दया है, आपको दया आ गई, लेकिन करुणा है कि दया आने के बाद आप कुछ कर रहे हैं, उसमें शब्द है करुणा, क्रिया। उस दया जो आपके अंदर पैदा हुई है उसको कार्य रूप देने के लिए आप क्रिया कर रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं। तो ये जो दूसरी स्थिति होगी, ये स्थिति होगी कि आप सेंसिटिव हुए, आपके मन में दया का भाव पैदा हुआ, आपने जैसे भी हो जो भी आपको करना पड़े, आपने कुछ ऐसे इंतजाम किए कि उस आदमी को जो सड़क के किनारे घायल पड़ा हुआ था, आपने उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया और डॉक्टरों को सौंपा ताकि उसकी जिंदगी बच सके। ये जो करना होगा, ये याद रखिए, तब होगा जब आपके पास मेंटल एनर्जी भी होगी। ये सेंसिटिविटी और मेंटल एनर्जी, या कह लीजिए इमोशनली, इमोशनल में, इमोशंस में फर्क है। इमोशंस जो सच्चे इमोशंस होंगे, जो रियल इमोशंस होंगे, वो आपको कमजोर नहीं बनाते हैं, वो आपको ताकतवर बनाते हैं। बैठ करके रोने लगना इमोशन नहीं है, ये एक कमजोरी है। इमोशंस में हमेशा जो आपका दिमाग है वो एक्टिव रहेगा, एक अलग तरह की डिमांड आपसे करेगा। तो दोस्तों, अब ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी और जो इमोशनल एनर्जी है, आप इन दोनों रिश्तों को देखिए। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन हम बहुत सरल शब्दों में देना चाहें तो मुझे लगता है कि शायद ये दिया जा सकता है कि जो इमोशनल एनर्जी है, यदि इसका विस्तार किया जाए, यदि इसको फैला दिया जाए, यदि इसको और ज्यादा संसाधित किया जाए, संसाधित करने का मतलब है दोस्तों कि प्रोसेस्ड किया जाए। प्रोसेस्ड करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक गंदा पानी है, राइट? अब उस गंदे पानी को हम जब प्रोसेस्ड करते हैं, संसाधित करते हैं, तो वो प्योर वाटर बन सकता है, है ना? गंगा नदी के सफाई अभियान में कहा जाता है ना कि जो गंगा नदी के किनारे जितने भी इंडस्ट्री हैं, वो जो उसमें प्रदूषित जल डालते हैं, तो वो संसाधित जल डालें, वो प्रोसेस्ड करके एक साफ सुथरा पानी गंगा में डालें, तो वो गंगा साफ रहेगी। तो यदि हम अपने इमोशंस को विस्तार देते जाएं, फैलाते चले जाएं और उसे संसाधित करते जाएं, तो वह धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो चीजें छोटी छोटी बातों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए शायद मैं सफल हो जाऊं। मित्रों, मुझे याद आ रहा है कि मैं उत्तराखंड में काशीपुर में गया था, वो उत्तराखंड में है, वहां जो सूर्य रोशनी वाले हैं उनकी फैक्ट्री है जिसमें बल्ब बनाते हैं। तो वहां के जो मैनेजर, जो हेड थे, वो मुझे और मेरी पत्नी को घुमाने के लिए ले गए उस प्लांट में कि वो बल्ब कैसे बनाते हैं, पूरा उन्होंने प्रोसेस दिखाया। तो जहां से उन्होंने शुरुआत की, ताज्जुब करेंगे कि वहां जो चीजें पड़ी हुई थी जिनसे बल्ब बन रहा था, मैं देख करके दंग रह गया। वहां जो छोटे छोटे गिट्टियां होती हैं वो पड़े थे, चूना पड़ा था, मिट्टी पड़ा था, ये सारी तरह की चीजें पड़ी थी, चार पांच तरह की ये ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जिन्हें आप कचरा कहते। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि देखिए ये पट्टे पर जाता है, फिर यहां धुलता है, फिर यहां ये ग्राइंड होकर के ये पाउडर बनता है, फिर यहां से ये होता है, फिर हम इसमें ये केमिकल डालते हैं, फिर ये इस रूप में चेंज होता है, और करते 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 आखिरी में ले जाकर के उन्होंने बताया कि ये बल्ब बन गया और उसके अंदर फिर ये फिलामेंट लग गया। मित्रों, मैं दंग रह गया। दंग इस बात को देख करके रह गया कि यार यहां जो इतना चमकीला जो बल्ब दिखाई दे रहा है, जो दूसरों को रोशनी देता है, उसकी शुरुआत, या कली चली बल्ब को हम छोड़ दें, फिलामेंट तो इससे नहीं बना था, लेकिन जो बल्ब के ऊपर जो कांच लगा हुआ है, जो इतना साफ सुथरा चमकीला खूबसूरत और चिकना दिखाई दे रहा है, यह कितने फालतू की चीजों से बना हुआ, कितने खुरदरे चीजों से बना हुआ है, यह उसी से बना हुआ है। यानी कि प्रोसेस्ड होते होते वो जो गिट्टियां और जो मिट्टियां और चूने और पत्थर जो पड़े हुए थे, वो प्रोसेस्ड होते होते यहां तक पहुंच गए हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी भी वो लास्ट डेस्टिनेशन है जहां तक हमें पहुंचना होता है या जहां तक हम पहुंचते हैं। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो यहां तक कि जो विचार भी हैं, विचार भी प्रोसेस्ड होकर के स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इमोशंस पहुंचते हैं, लेकिन वो विचार भी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, उसकी बात करके मैं चीजों को उलझाना नहीं चाहता, ज्यादा वो वैज्ञानिक हो जाएगा, ज्यादा तर्क प्रधान हो जाएगा। हमें तो यह है कि हमारा चांद मिल जाए, हमारी ईद मन जाए, हमें तो अपने काम की चीजें चाहिए, तो हम लोग वहीं तक लेंगे। तो इसीलिए मैंने अभी केवल इमोशंस को लिया है स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में। इसे मैंने कहा संसाधित करना, प्रोसेस्ड करना। जैसे मान लीजिए एक प्रेम है, चलिए राइट, एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसका प्रेम किससे होता है? उसका प्रेम अपनी मां से होता है, क्योंकि वो मां के शरीर का ही अंग है। देखिए, बच्चा रियल में जो है ना, वो एक्सटेंशन ऑफ हिज मदर्स बॉडी है। कोई भी बच्चा बच्ची जो है वो अपनी मां के शरीर का ही विस्तार है, तो अपनी मां से प्रेम करेगा, क्योंकि सारी उसका जो पूरा का पूरा उसकी जो बॉडी की केमिस्ट्री है वो मां से मैच करती है। धीरे धीरे देखिए कि बच्चा बड़ा होता है, पिता जुड़ते हैं, दादा दादी परिवार के मेंबर्स जुड़ते हैं, पड़ोसी जुड़ते हैं, दोस्त जुड़ते हैं, फिर क्लास के दोस्त जुड़ने लगते हैं, टीचर्स जुड़ने लगते हैं, समाज जुड़ने लगता है। धीरे धीरे उसका फैलाव होता चला जाता है। वही मूल तत्व प्रेम ही है जो शुरुआत में मां के साथ था। इसके बाद वो फैलते 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 कहां तक फैल जाता है? दोस्तों, मदर टेरेसा भी तो कभी ना कभी एक बच्ची ही रही होंगी, बच्ची ही रही होंगी, और उनमें भी वही बीज, वही प्रेम का वही बीज रहा होगा जो हम सब में है। उनका बीज कोई बड़े स्पेशल क्वालिटी का बीज नहीं रहा होगा। उन्होंने किया क्या कि अपने इस प्रेम के इमोशंस को फैलाना शुरू किया, और फैलते 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 वो इमोशंस पूरी दुनिया पर छा गया। जो भी दुखी प्राणी है वो उनके उस इमोशंस के दायरे में समा गया, और समाया सेंसिटिविटी के लेवल पर नहीं, एक्शन के लेवल पर उन्होंने उसके लिए कुछ किया। इसको मैं कहता हूं फैलाओ। बेसिकली इमोशन क्रमशः हमारे फैलते फैलते अध्यात्म तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मेरी बात से थोड़ा सा भी इत्तफाक रखते हैं, थोड़ी सी भी इससे आप असहमति रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात भी मानकर चलनी चाहिए कि उसकी संभावना आप में भी है। संभावना की बात छोड़िए, वो है ही। संभावना की भी बात छोड़िए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। संभावना में तो ये होता है कि हो सकता है कि ना भी हो, वो आप में है। अगर हम मनुष्य हैं, मनुष्य जाति में हमने जन्म लिया है, तो ये चारों के चारों एनर्जी की संभावनाएं हम में ऑटोमेटिक हैं। ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो हमारे अंदर हैं। ये जरूर हमारे ऊपर है कि इसमें से हम किसको कितना फैलाते हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत बहुत छोटा सा अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, हार्डली वन मंथ्स ओल्ड, एक महीना भी पुराना नहीं है, बहुत नया अनुभव है। छत्तीसगढ़ में एक शहर है बिलासपुर। बिलासपुर से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक दरगाह है, लूतरा। लूतरा जिस जगह है वहां दरगाह है। वहां हम लोग गए, मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरा बेटा था, हम लोग गए, और उस दरगाह पर हमें एक चादर चढ़ानी थी, सम्मान में चादर चढ़ानी थी। चादर का कोना, एक कोना मैंने पकड़ा, एक कोना बेटे ने पकड़ा, इस तरीके से हम लोगों ने करा, और उस चादर को हमने मजार पर अर्पित की, चढ़ाई। मित्रों, एक बड़ा विचित्र सा अनुभव, हालांकि ये बड़े व्यक्तिगत अनुभव होते हैं और कहा जाता है कि इन्हें सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मैंने एक सार्वजनिक दायित्व एक स्वीकार किया है और आप लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, तो मेरी अपने अनुभव की जो सच्चाई होगी, जो प्योरिटी होगी, जो ट्रुथनेस होगी, वो मैं दूसरे के अनुभवों पे तो थोड़ा सा उतना यकीन कैसे करें, या हो सकता है कि वो बताने में कुछ गड़बड़ी करें, लेकिन कम से कम मेरे अपने अनुभव तो बिल्कुल प्योर होंगे ही, इसलिए मैं ये अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मित्रों, चादर को चढ़ाने के बाद जैसे ही मेरे हाथ ने मजार को स्पर्श किया, मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या, पूरी की पूरी मेरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी बिल्कुल जीवित दरवेश को स्पर्श कर रहा हूं। मेरा पूरा का पूरा शरीर झंझनाहट से बढ़ गया और कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया कि मैं किसी दरगाह पर चादर चढ़ा रहा हूं। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह तो जरूर है कि वो जो दरगाह है उनके प्रति मेरी आस्था थी, तभी हम गए थे, किसी ने कहा नहीं था जाना। बिना आस्था के तो ये चीजें होती नहीं है, और जब आस्था है, आस्था क्या है, वो एक इमोशन का हिस्सा है। इमोशन जब और गहरी हो जाती है तो आस्था में बदल जाती है, जब आस्था और गहरी हो जाती है तो वो भक्ति में बदल जाती है, जब भक्ति और गहरी होती है तो अध्यात्म में बदल जाती है। ये एक सीढ़ियां हैं, जैसे मैंने कहा कि सोने और बांस की सीढ़ियां, ये सीढ़ियों पर लगे हुए वो खपचे हैं जिन पर आप धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं और एक जगह ऐसी पहुंचते हैं जबकि वो खपचे बंद हो जाते हैं और आप एक छत पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अब ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं, आप आराम से विचरण करते हैं। मित्रों, ये एक मेरा बहुत छोटा सा अनुभव है और अभी जबकि मैं ये अनुभव आप लोगों से कह रहा हूं, सच पूछे तो मेरा गला भर आया और आपने देखा कि अभी मुझे अपने गले को साफ करना पड़ा है। हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक इसे एक दूसरे रूप में कहें कि ये आपके अपने कॉन्शस की स्थिति है, आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे, या एक तरह का ये पागलपन है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है और अपने अपने ढंग से लोग देते भी हैं, क्योंकि जब अध्ययन किया जाता है तो सब अपने अपने अपनी अपनी बात कहेंगे ही। क्या था मुझे नहीं मालूम, और सच पूछे तो मुझे मालूम करना भी नहीं है, क्योंकि मैं उसे जी रहा हूं, मेरा वह अपना अनुभव था और मैंने, सच यह है कि उस अनुभव को एंजॉय किया। अगर बहुत ही भौतिकवादी शब्द में कहूं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के तहत अपनी बात कहूं, तो मैंने उसको एंजॉय किया। मुझे वो चीज स्वादिष्ट लगी, चीजी कह लीजिए आप, मुझे स्वादिष्ट लगी और मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दोबारा फिर करूंगा, क्योंकि आपको जब खाने में कोई भी चीज अच्छी लगती है तो स्वाभाविक तौर पर आप उसे बार बार खाना पसंद करते हैं। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल सी चीज है। जिनका शोध का काम है वो बिल्कुल शोध करें, और हम जो आज विकास की जो इस स्थिति तक पहुंचे वो शोध के ही कारण पहुंचे हैं, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव था वो मैंने थोड़े से में आपके साथ शेयर किया। तो आपने लगभग लगभग मैं समझता हूं कि यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो कैसे जनरेट होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। मैं अब इन सारे कुछ चर्चा के बाद थोड़ी सी इन्हीं बातों को एक अलग तरीके से स्पष्ट कर दूं तो शायद बेहतर होगा कि मित्रों, हम सबके पास इमोशंस हैं। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशनल एनर्जी क्या होती है, वो आप इससे पहले वाले ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में देख चुके हैं। जब हम इन्हें प्रोसेस करते जाते हैं, इन्हें और पालते हैं, पोसते हैं, बढ़ाते हैं, इनकी सफाई करते हैं, इन्हें फैलाते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देखिए कि मैंने शक्ति की बात कही थी, जो इमोशन के जो एनर्जी है वो इमोशन की एनर्जी तो हमारे तक ही सीमित है, और इसमें आप ले लीजिए पूरे की पूरी दुनिया को ले लीजिए, ब्रह्मांड को ले लीजिए, इमोशंस किसी के प्रति भी हो सकते हैं, तो उनकी शक्ति आपको मिल जाती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ये अनंत हो जाती है, इसकी फिर कोई सीमा नहीं रह जाती, इसीलिए ये सर्वोत्तम है और सर्वश्रेष्ठ है और सर्वशक्तिशाली है। क्योंकि इमोशनल एनर्जी जो आपको स्पिरिचुअल एनर्जी जो मिलती है, इसका मतलब है कि जो आपकी कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी आपकी अंतरिक्ष से हो गई, ब्रह्मांड से हो गई, जो भी आपने नाम देना चाहें, और अगर सरल शब्दों में कहना चाहें तो सीधी सी बात है कि प्रकृति से हो गई। जैसे दोस्तों कि आपके घर में बिजली के सारे चीजें सारी फिटिंग हो चुकी है, ट्यूबलाइट लग चुकी हैं, बल्ब टंग चुके हैं, पंखे लग चुके हैं, फ्रिज आ चुका है, सारी चीजें हैं, वायरिंग भी सब कुछ हो चुकी है, लेकिन गड़बड़ी केवल एक काम रह गया है, वो कि इस ये जो वायरिंग का जो शुरुआत का जो तार है, शुरुआत का जो वायर है, वो उस वायर से नहीं जुड़ा हुआ है जो आपके घर के सामने से गुजर रही है, उससे नहीं जुड़ा हुआ है, बिजली की सप्लाई से नहीं जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप अपने इस वायर को उस बिजली की सप्लाई वाले वायर से जोड़ देंगे, आप उतना बड़ा जो ग्रिड है, पूरे के पूरे जो बिजली सप्लाई का जो क्षेत्र है, आप उससे जुड़ जाएंगे और आपके घर ये जितनी भी फिटिंग थी काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये बहुत अधिक इस मायने में शक्तिशाली है कि इसका कोई इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है दोस्तों। लेकिन यहां मैं एक बात आप लोगों को सतर्क करना चाहूंगा, वो ये कि आप इसकी खोज में मत लगिए। आप इस पर विश्वास अविश्वास अपने ढंग से कर लीजिए, लेकिन आप ऐसी खोज में मत लगिए कि आपको कहीं वो बिजली के खंभे मिल जाएंगे जहां आप अपने तार को जोड़ सके। ये ऑटोमेटिक होगा। कैसे होगा मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, इसके लिए आपको अलग से किसी तलाशी की जरूरत नहीं है, ये होगा, ये होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, चूंकि दोस्तों अब इतना वक्त नहीं रह गया है और जो एक आध दो मिनट बचे भी हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें अपनी बात को बहुत संक्षिप्त रूप में आपको कह के अपनी बात को समाप्त कर दूं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से और वक्त चाहूंगा और अगली बार हम लोग इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। और मैं इसलिए भी इस पर बात करना चाहूंगा क्योंकि ये सिविल सर्विस के फोर्थ पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, याद रखिए कि वो आप सबके अंदर है, उस सब की संभावनाएं आप सब में हैं, हम सब में हैं, हम सब में वो बीज रूप में उपस्थित है, मौजूद है। लेकिन मित्रों, पेड़ है, कहां है, उस बीज में है, लेकिन क्या बीज में वो पेड़ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो अगर बीज में पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि उस बीज में पेड़ है ही नहीं? तार्किक रूप से तो आप यही कहेंगे, यार उतना बड़ा पेड़ और ये छोटा सा बीज, ये पेड़ इस बीज में कैसे समा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच यही है कि अगर वो पेड़ कहीं है तो इस बीज में ही है। लेकिन क्या बीज से वो पेड़ अपने आप निकल जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। आपको उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं करनी पड़ेंगी, बीज को जमीन में रोपना पड़ेगा और एक दिन वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जहां तक स्पिरिचुअलिटी का सवाल है, उसको आप बिल्कुल इस पर ज्यों का त्यों लागू मत कर दीजिएगा। ये एक केवल जिंदगी को जीने का एक अंदाज है, नथिंग एल्स, एफर्टलेस है। इसके लिए कोई आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जो प्रयास करते हैं वो इसे हासिल भी नहीं कर पाते। इसीलिए इसके लिए आप ज्यादा छटपटाहट मत रखिएगा। मेंटल एनर्जी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, या आपको फिजिकल एनर्जी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, टू सम एक्सटेंड इमोशनल के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो फैलता है ना, अपने आप में कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा, इमोशंस फैलते फैलते स्पिरिचुअलिटी बन जाते हैं। तो आपको केवल सिचुएशन प्रोवाइड करनी है, वो अपना काम खुद करता रहेगा। तो इसके लिए आप अधिक परेशान बिल्कुल भी न हो। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को समाप्त करता हूं। और चूंकि कुछ बातें स्पिरिचुअल एनर्जी की रह गई हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सादर अभिवादन आप सब फिर स्वीकार करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।